स्क्रीन शेयर करी है कि पेज नंबर 213 है ये मारुफुल कुरान वॉल्यूम 8 का, और जिनके पास दूसरी प्रिंटिंग है तो उसमें पेज 213 तो नहीं बनेगा, तो इस तरह से आयात नंबर भी लिख दी हैं, सूरह नजम की आयत नंबर 33 से तर्जुमा आज हमने पढ़ना शुरू करना है। नहीं बल्कि तर्जुमा तो बाद में करेंगे, पहले ये पिछले पेज से भी थोड़ी सी पढ़ना बाकी रह गया था, तो पिछली आयात की तफसीर अभी चल रही है तो वहीं से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ी मुस्तफा अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो जी, तो इस आयत की तफसीर में हमने पिछले हफ्ते ये पढ़ लिया था कि अल्लाह ताला ने जो इसलिए बनाया ना गुनाहों को बख्शने का, तो वो ये है कि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करना ये फ़र्ज है, ठीक है। और गुनाहों की माफ़ी का क्या उसूल बनाया? माफ़ी का उसूल ये है कि कबीरा गुनाहों से माफ़ी तौबा के ज़रिए से होती है, ठीक है। यानी उनके ऊपर नदामत हो दिल में कि मैंने बुरा किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, इसको निदामत कहते हैं, ठीक है। तो तौबा के लिए सबसे पहली चीज़ निदामत, ठीक है। दूसरी शर्त तौबा की क्या है कि उस वक्त दिल में इरादा हो कि आइंदा नहीं करना है, उस वक्त इरादा, ठीक है ना। बाद में ये इरादा बदल जाए तो बाद की बात है, लेकिन उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने मैंने फिर करना है। ये नहीं कि मैं फिर कर लूंगा, हो सकता है मैं फिर कर लूं, ये नहीं, बल्कि दिल में ये मौजूद हो कि नहीं मैं तौबा जो है ना वो मैंने बुरा किया लेकिन मैं तो फिर करूंगा, ठीक है ना। एक होता है ना जिसको हठधर्मी कहते हैं या एक दिल के अंदर एक बेखौफी कहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो तौबा नहीं है, ठीक है, कि मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगी, ठीक है। ये अगर दिल की कैफियत है तो तौबा नहीं हुई है। तो तौबा के लिए पहली शर्त क्या है? गुनाह के ऊपर निदामत। दूसरी शर्त क्या है? कि आइंदा ना करने का इरादा, ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि जो तौबा कर रहे हैं गुनाह से, तो अब गुनाह से बचने के लिए कुछ तदबीर करना, कुछ कुछ अमल करना, कोई स्टेप उठाना, ठीक है ना। ये तीसरी शर्त होती है तौबा के लिए, ठीक है ना। किसी शख्स ने जो है वो गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी तो दिल में कर ली, यहाँ भी गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ये भी सोच लिया कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है ना। लेकिन उसने ये तीसरा काम नहीं किया कि गुनाह से बचने के लिए किसी किस्म का कुछ कुछ अमल करना, कोई हिफाजती तदबीर करना, ये उसने नहीं किया, तो उसकी भी तौबा नहीं है, ठीक है। तो तौबा की कुछ शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करना पड़ता है, तब जो है ना इंसान की तौबा जो है वो कबूल हो जाती है, और तौबा कबूल हो जाती है फिर उसके लिए आइंदा गुनाहों से बचना भी अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने तौबा के साथ जो है ना ये जोड़ के रखा हुआ है कि जिसने सही तौबा कर ली शराइत के साथ, तो फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर देते हैं गुनाहों से बचने के लिए, ठीक है। हमारा मसला यही होता है कि हम गुनाहों से क्यों नहीं बच पा रहे होते हैं, क्योंकि हम तौबा कर ही नहीं रहे होते, ठीक है ना। हम इन तीन शराइत को पूरा नहीं कर रहे होते, यही असल में रीजन बनती है कि हम गुनाहों से नहीं बच पा रहे होते हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो इस बारे में तो जरूर से पूछ लें, क्योंकि तौबा जो है ना ये फर्ज है, फर्ज, पता है ना, पांच नमाजें पढ़ना फर्ज होता है कि नहीं पता? पता है ना सबको, रमजान के रोजे रखना फर्ज होता है, पता है ना सबको, जकात देना फर्ज होता है, पता है ना सबको, क्या ये बात आपको पता है? तौबा करना फर्ज होता है। नमाजें तो पढ़ रही हैं लेकिन तौबा नहीं कर रही, तो फिर इतना बड़ा फर्ज जो है वो तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो भाई फर्ज है तो फर्ज को जब तक समझा नहीं तो फिर फर्ज कैसे अदा करेंगी? मिसाल के तौर पर ये पता है, हाँ नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, सारी दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, आते ही नहीं कि नमाज पढ़ते कैसे, है ना? नमाज के फराइज ही पता नहीं, नमाज का तरीका ही पता नहीं, वजू करना ही नहीं आता, तो भाई ढंडोरा पीटने से क्या फायदा होगा कि नमाज फर्ज है? फायदा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह नमाज फर्ज है तो उसका सीखना भी फर्ज है ना? सीखे बगैर आप नमाज के फर्ज की तकरार करके कोई फायदा नहीं होगा आपको। उसी तरीके से तौबा फर्ज है तो तौबा को सीखना भी फर्ज है। ठीक है, तो जब तक समझ में ही नहीं आया कि तौबा क्या चीज होती है, कैसे करनी होती है, क्या उसकी शराइत होती है, तो इस फर्ज से तो फिर महरूम ही रहना। ठीक है, तो जो कबीरा गुना होते हैं वो तौबा से माफ होते हैं, और जो सगीरा गुना होते हैं वो कैसे माफ होते हैं ये आप बताएंगे। सगीरा गुनाह कैसे माफ होते हैं जी? उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या उसूल बनाया है जी? कबीरा गुनाह का उसूल तो आपको बता दिया, बाकी आप बताएं कि सगीरा कैसे माफ होता सगीरा गुनाह को छोड़ने से माफ होते हैं। इन्होंने प्राइवेटली लिखा है कि सगीरा गुनाह जो है वो छोड़ने से माफ होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि सगीरा तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप सगीरा छोड़ दें, तो जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है तो वो आप कर ही नहीं सकती, तो फिर माफ कैसे होंगे? तो इस वजह से जवाब गलत है। दुआ मांगने से सगीरा माफ होता है, जवाब गलत है। वुजू करने में सगीरा गुनाह धुल जाते हैं। चलिए, पूरा जवाब नहीं है ये, आधा जवाब है, लेकिन पूरा जवाब चाहिए। छोटी छोटी नेकियों से लाइक वुजू, ये भी आधा जवाब है, पूरा जवाब नहीं है। सगीरा कैसे माफ होते हैं भाई? ये आधा जवाब क्यों है? क्योंकि वुजू करने से और छोटी छोटी नेकियों से जो माफ होते हैं ना वो नहीं माफ होते। एक शर्त पूरी होती है तब माफ होते हैं छोटी छोटी नहीं करने से। वो क्या शर्त है? जब कबीरा गुनाह से तौबा करेंगे तो सगीरा आमाल से माफ हो जाएंगे, यानी सगीरा गुनाह आमाल करने से माफ हो जाएंगे, नेक आमाल करने से। क्या आप उनकी जुमले को मुकम्मल कर रही हैं? तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ये नेक अमाल करने से सगीरा माफ हो जाते हैं तो आपके जवाब भी अधूरा है। ठीक है, तो मुकम्मल जवाब क्या है जो उन्होंने लिखा है खुदा साहिबा ने, कि जब कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं और बचते हैं, तौबा करते हैं जिसके अंदर कबीरा गुनाहों से बचना भी शामिल है, ठीक है, तो फिर जो सगीरा गुनाह हमसे मुस्तकिलन होते रहते हैं, ये सगीरा गुनाह जो है ना ये इंसान से होते रहते हैं, मुस्तकिल होते रहते हैं, इनसे बचना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, और बहुत कम लोग सगीरा से बच वरना नहीं बच नहीं बच सकते। तो सगीरा को माफ करने के लिए तो फिर दूसरे तरीके चाहिए, यानी रुजू करना, छोटी नेकियां यानी नेकियां करते रहना, नफिलें पढ़ते रहना और सबका खैरात करते रहना, इनसे सगीरा माफ होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कबायर से इज्तनाब भी हो रहा हो। अगर कबायर से इज्तनाब नहीं हो रहा तो वुजू करने से और छोटी छोटी नेकियां करने से सगीरा माफ नहीं होते हैं। ये है उसूल की बात, ये है कायदे की बात जो कि आदि आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो अब ये जो तफसीर में हजरत लिखते हैं वो पढ़ लेते हैं कि पेज नंबर 212 के ऊपर इन आयात की तफसीर में वो कहते हैं कि सगीरा और कबीरा गुनाह की तारीफ, ये मजमून पूरी तफसीर के साथ सूरह निसा की आयत इज इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु की तफसीर में मारकुल कुरान जिल्द दोम सफा 381 से 382 तक लिख दिया गया है। ठीक है, अब आपके पास सफा नंबर ये हो या ना हो, लेकिन जिल्द नंबर 2 के अंदर सूरह निसा उठाएं, थोड़ा सा आगे पीछे पेजेस को आगे करें, आपको ये आयत आसानी के साथ मिल जाएगी। आयत नंबर अगर किसी के पास लिखी हुई है तो वो यहाँ पर बता सकती है, मेरे पास आयत नंबर निकल गया था। ठीक है, लेकिन ये सूरह निसा में आसानी से मिल जाएगी आपको ये आयत। तो उसकी तफसीर पढ़ लें, वहाँ पर कबायर की तारीफ भी है और ये वाला उसूल जो भी आपके सामने रखा गया है ना दोबारा से, तो वो उसूल जो वहाँ पे लिखा हुआ है। हुआ आलमु बिकुम इज अनशअकुम मिन अल अर्ज व इज अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम। तो अजन्ना जो है वो जनीन की जमा है, बच्चा जब तक माँ के पेट में है उसको जनीन कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में फीटस कहा जाता है। इस आयत में हक़ाला ने इंसान को इस पर मुतनब्बे फरमाया है कि वो खुद अपनी जान का भी इतना इल्म नहीं रखता जितना उसके खालक खालक सुबहानों को है। ठीक है ना, यानी अपने बारे में हमें खुद नहीं पता होता, बहुत कम पता होता है, अल्लाह ताला को हमारे बारे में सारी तफसीलात का इल्म होता है, क्योंकि माँ के पेट में जो तख्लीक के मुख्तलिफ दौर उस पर गुजरे हैं, इस वक्त वो कोई इल्म शऊर ही ना रखता था मगर उसका बनाने वाला खूब जानता था जिसकी हकीमाना तख्लीक उसको बना रही थी। इसमें इंसान को इज्ज़ व कम इल्मी पर मुतनब्बे करके ये हिदायत की गई है कि वो जो भी कोई अच्छा और नेक काम करता है वो उसका ज़ाती कमाल नहीं है। ठीक है ना, यानी हमारी आजजी, आजिज होना कहते हैं नाकाम होना, शिकस्त खोर्दा होना, हार जाना। ठीक है ना, यानी इनकेपेबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आजजी, ये आजिजी वो वाली आजिजी नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को, यानी आजिजी उनकी सारी का इजहार करना, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आजिजी का मतलब है कि यू आर इनकेपेबल, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है कि तुम ये काम कर सको। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका जाती कमाल नहीं है बल्कि खुदा ताला का बख्शा हुआ इनाम ही है कि इनाम के काम करने के लिए आज़ा व जवारे उसने बनाए, उनमें हरकत की कुव्वत उसने बख्शी, फिर दिल में काम करने का दाइया और फिर उस पर अज़्म व अमल उसी की तौफीक से हुआ। तो किसी बड़े से बड़े नेक सालेह और मुत्तकी व परहेजगार इंसान को भी ये हक नहीं पहुंचता कि अपने अमल पर फख्र करे, ठीक है, और इस अमल को अपना कमाल करार दे कि गुरूर में मुब्तला होता है। ठीक है, अमल पर फख्र करना मतलब इसका ये नहीं है कि अच्छे अमल को करने के बाद जो दिल में खुशी पैदा होती है, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र करता है बंदा, वो भी ना करे, खुशी ऑटोमेटिकली दिल में पैदा होगी। ठीक है ना, और अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो इसको जरूर बिल जरूर करना है नेक अमल करने के बाद। यहां पर उसकी नफी नहीं हो रही है, यहां पर फखर करने की नफी हो रही है। फखर का मतलब यहाँ पर है तकब्बुर करना, गुरूर जिसको उर्दू में कहते हैं, गुरूर करना। ठीक है, और यानी ये कि मैं जिसमें जिसको मैं कहते हैं, अनानियत कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं, और दूसरे को जो है ना वो आप जो है वो घटिया समझना शुरू हो जाते हैं, बुरा समझना शुरू हो जाते हैं जो कि ये नेक अमल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी नफी हो रही है, यानी ये नहीं कर सकते हम। तो और दूसरा ये कि इस तरह से सोचना कि जी मैंने अपनी अकल को इस्तेमाल करके और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके ये वाला काम किया, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मैंने काम किया, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई, मुझे तौफीक दी कि ये काम मैं कर सका। ठीक है, तो ऐसा करना तो लाजमी है, गुरूर करना जो है वो हराम है। इसके अलावा सब चीज़ों का मदार मदार खात्मे और अंजाम पर है, अभी इसका हाल मालूम नहीं कि खात्मा किस हाल पर होता है, तो फख्र व गुरूर करना किस बात पर, इस हिदायत को अगली आयत में इस तरह बयान फरमाया। ठीक है भाई, हम अपने अमल के ऊपर फख्र करना यानी गुरूर और तकबर करना कैसे कर सकते हैं जबकि हमें पता ही नहीं कि हमारा खात्मा किस हाल पे होगा, क्या ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे के बिन के नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से कफर गुरूर से तो सेंस भी कोई नहीं बनती ना। वला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा अअलमु बिमन तक़ा, यानी तुम अपने नफ्स की पाकी का दावा ना करो क्योंकि उसको सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन कैसा है और किस दर्जे का है, क्योंकि मदार फजीलत तकवा पर है, जाहिरी आमाल पर नहीं है। और तकवा भी वो मोतबर है जो मौत तक कायम है। यानी आप जिंदगी में बड़ी तकवे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बज़ाहिर आप समझ रहे हैं कि बड़ा मैं तो सारे के सारे फराइज पूरी कर रही हूँ और जो है वो गुनाहों से भी बच रही हूँ, तो भाई आपके ख्याल में ऐसा है, हकीकत हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या आपके अमाल कबूलियत के भी काबिल हैं कि नहीं, क्या आपके जो गुनाहों से बचना जो है उसमें आपकी नीयत सही है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर नीयत गलत है गुनाहों से बचने की तो फिर वो गुनाहों से बचना भी बेकार है। मिसाल के तौर पर कोई जुए से बच रहा है ना, बिल्कुल जुआ नहीं खेलता, ठीक है, लेकिन नीयत यह है कि भाई जुआ खेलूंगा तो इतना बड़ा कहीं नुकसान हो गया ना तो फिर मेरा क्या बनेगा, मेरा सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, दिल में ये नीयत आ सकती है, तो वो जुए से बच तो रहा है, यानी गुनाह से, गुनाह कबीरा से बच तो रहा है, लेकिन आखिरत के अजर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से नहीं बच रहा, बल्कि माल के जाया हो जाने की वजह से बच रहा है। तो ऐसा गुनाह से बचना इसके फायदे इसके काम का नहीं है। शराब से बच रहा है ना, शराब कितना गुनाह बड़ा गुनाह है, लेकिन शराब से बच रहा है क्यों भाई, कि शराब पी लिया तो पता नहीं कहीं जो है ना मैं दूसरों के सामने कोई ऐसी हरकत ना कर दूं कि मेरी इज्जत खराब हो जाए दूसरों के सामने, क्योंकि शराब पीने के बाद जो है वो अकल अपने ठिकाने में नहीं रहती, तो इस वजह से शराब नहीं पीता। ठीक है, या लोग क्या कहेंगे कि ये देखो तो देखो शराब पीता है, तो ये क्या है, गुनाह से तो बच रहा है ना, यानी अमल तो कर रहा है जो कि जाहिरी तौर पर तकवा वाला अमल लगता है क्योंकि गुनाह से बचता है, लेकिन नीयत क्या है, लोगों के सामने शर्मिंदगी से बचना। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने मना किया है आखिरत में मुझे इसकी सजा होगी, है ना, इस वजह से भी शराब से बच रहा है। तो भाई अमाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अमाल कर रहा है, लेकिन कबूलियत नहीं है। तो ये तो बड़ी बड़ी हम पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान जो है ना वो शराब जुआ तो आमतौर पर कोई इन्वॉल्व नहीं होता इनके में दीनदार मुसलमानों में, लेकिन अगर ये उसूल समझ में आ गया तो अब इसकी इसके ऊपर हम अपने बाकी सारे अमाल को भी तोल सकते हैं ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किस नीयत से कर रहे हैं, अब कबूलियत तो नीयतों के ऊपर डिपेंड करती है, अगर नीयत सही नहीं है तो कबूलियत नहीं है। ठीक है, हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम उनके वालिदैन ने बर्राह रखा था जिसके मानी है नेकोकार। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मस्कूरा फला तुज़क्कू अन्फुसकुम तिलावत फरमा कर इस नाम से मना किया क्योंकि इसमें अपने नेक होने का दावा है, और नाम बदल कर ज़ैनब रख दिया। ठीक है, ज़ैनब का मतलब भी जीनत वाली, यानी इसका वैसे तो मतलब बहुत क्लियर नहीं है ज़ैनब का, लेकिन ये बहुत मकबूल नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रख, पहली बेटी का नाम, ठीक है, और आपसे सुनम की दो बीवियों का नाम ज़ैनब था, तो ये कुरैश के अंदर ना एक अच्छा नाम तो कंसिडर किया जाता था, जबकि बर्रा जो है ना उस वो आपसे सुनम ने पसंद नहीं फरमाया और उसकी रीज़न यही बताई कि फला तुज़क्कू अन्फुसकुम कि अपने आप को जो है ना वो इस तरह का टाइटल मत दे, जैसे कि कोई अपना नाम रख दे मुत्तकी, ये तो भी बड़ा मुत्तकी है। ठीक है, तो ऐसा नाम नहीं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु अन से रिवायत किया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूसरे आदमी की मदाह व तारीफ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया कितने किसी की मदाह व सना करना ही हो तो इन अल्फाज से करो कि मेरे इल्म में ये शख्स नेक मुत्तकी है। ठीक है ना, यानी मैंने उसको नेक और मुत्तकी पाया है और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बयान करो, ये ना कहो कि वो तो है नेक और मुत्तकी। ठीक है, अच्छा ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है, इसको समझना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आगे सुने कि वला उज़क्की अल्लाह अहदन मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के नज़दीक भी वो ऐसा ही पाक साफ है जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम किसी को नेक मुत्तकी नहीं कह सकते, किसी की जो है वो तारीफ नहीं कर सकते? हालांकि दीगर हदीसों से तो हमें पता चलता है, या अपने मशायख की बातों से, और जो एक आम जो मुहावरा कहते हैं, तो उससे तो पता चलता है कि लोगों की तारीफ करनी चाहिए, लोगों के नेकियों के ऊपर उनको कहना चाहिए। ठीक है, यानी ये तो कोई बुरी बात नहीं, अजीब सी बात लग रही है वैसे इस पैराग्राफ में जो लिखी है। तो ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह क्या समझ में आती है? वो यही है कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, यानी ये सहाबी जो है ना, जिस शख्स के बारे में बात कर रहे थे, उस शख्स का कोई ऐसा अमल नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं किया कि इस शख्स को जो है ना वो यानी ऐसे ओपनली प्रेज किया जाए। ठीक है ना, कुछ था ऐसा मामला जो कि इस तारीफ करने वाले सहाबी को पता नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम को पता था। ठीक है, तो इस वजह से इसने जो ऐसी बात कही ना, इसकी वजह से ना किसी किस्म के मिसअंडरस्टैंडिंग के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैल जाएगी, लोगों में कंफ्यूजन फैल जाएगी, जबकि ये शख्स जो है ना वो इतना नेक मुत्तकी है नहीं। इसकी कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से ना लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अगर ये नेक मुत्तकी शख्स था, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने इसकी तारीफ करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा बल्कि उस बात को खामोशी से सुन लिया, तो इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इसको मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट मिल गया मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट। अब इसका हर अमल जो है वो तकवा वाला ही होगा, इसका हर अमल सही होगा। ठीक है, हालांकि उस शख्स का हर अमल सही नहीं था। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, उन्होंने खामोशी इख्तियार करने की बजाय वही उसकी इसलाह कर दी कि नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे हजरात भी मौजूद थे कि जिनकी तारीफ नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई, हत्ता के कुरान में उनकी तारीफें हुई हैं, राइट? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, ये अशरा मुबशरा कौन है? अशरे मुबशरा वो हैं कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जन्नत की नाम लेके बशारत दी है। तो क्या ख्याल है, अशरे मुबशरा की तारीफ करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम टोकेंगे किसी को कि नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि ये नहीं? कह भाई, आपने खुद सर्टिफिकेट दिया है इसको जन्नत का, तो अब अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा है तो क्या नबी अलैहिस्सलाम उसको डिस्करेज करेंगे? नहीं, अशरे मुबशरा को सर्टिफिकेट मिल चुका। ठीक है ना, वो यानी उनके बारे में फिर कोई डाउट नहीं रहेगा ना, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। अब लोग उनकी तारीफ करेंगे, खूब करें तारीफ। ठीक है, तो उनको मना नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से ना देखें, हदीसें जो होती है ना, इनको सियाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स के साथ समझना होता है, वरना बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारे मदारिस में जो हदीसें पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं पढ़ाना शुरू कर देते हर हदीस को। हाँ ठीक है, छोटी छोटी किताबें हदीस की, जैसे कि आप लोगों को माशाल्लाह पिछली क्लास में ज़ादु तालबीन की हदीसें पढ़ाई हैं, तो ज़ादु तालबीन की हदीसें बहुत ही जनरलाइज किस्म की हदीसें, बड़ी सिलेक्टेड हदीसें हैं ज़ादु तालबीन के अंदर। उसी तरह रियाजु सालिहीन हदीस की मशहूर किताब है, उसमें भी बड़ी सिलेक्टेड हदीसें हैं, वो उनमें ज़्यादा आपको तशरीह की जरूरत नहीं है। लेकिन बुखारी शरीफ कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते कि चलो जी दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन क्लास के अंदर जो है ना, चले हम आपको बुखारी शरीफ पढ़ाना शुरू कर दें। हरगिज नहीं, बुखारी शरीफ दीन एसेंशियल्स या आलिमा कोर्स के पहले साल में पढ़ाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती भाई? हालांकि वो भी तो नबी अलैहिस्सलाम की बातें हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? नहीं, इसलिए कि उसके अंदर सारी हदीसें मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो कि अच्छे खासे कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं समझ में आ सकती, या गलत समझ में आ सकती है, उल्टी समझ में आ जाएंगी बंदे के। ठीक है, तो तो इस वजह से मदारिस के अंदर कई साल वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया जा रहा होता है, फिर जा करके दौरे हदीस के साल के अंदर खूब तफसील के साथ उन हदीसों को समझाया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जैसे एक उसकी एक मिसाल है कि भाई आप क्या मतलब किसी की तारीफ नहीं करें, इसका मतलब है किसी को अच्छा नहीं कहें, किसी हर एक को जो है वो बड़े कंडीशनल किस्म की आप लोगों की तारीफ करें। हालांकि बहुत सारे लोगों की तारीफें तो मौजूद हैं हदीस के अंदर, फजाइल के ऊपर, मनाकिब के ऊपर बहुत सारी तारीफें मौजूद हैं, फिर हम क्यों नहीं करें इसकी तारीफ। इस वजह से इन बातों को जरा समझना पड़ता है। इसी वजह से जो इवन तफसीर की किताब भी है तो वो जरा उस्ताद की निगरानी के अंदर ही पढ़ने से फिर इंसान जो है वो गलतियों से महफूज रहता है, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत सारी। अच्छा आगे चलें कि अफराइत अल्लज़ी तवल्ला वअअ्ता क़लीलन वअक़दा, अफराइत अल्लज़ी तवल्ला, तो साथ साथ तर्जुमा करके जाते हैं कि क्या आपने देखा अल्लज़ी उसको जो तवल्ला उसने पीठ फेरी। ठीक है ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम से मुंह फेर लिया, तो ये बात तकरीबन इन्हीं अल्फाज में पीछे भी हुई थी, अम्मन तवल्ला, कि आप एराज कीजिए उससे जिसने पीठ फेरी। ठीक है ना, अब उसी तरह के शख्स के बारे में बात हो रही है कि आपने देखा है उस शख्स को जिसने पीठ फेर दी, वह अपा कलीलन व अकदा, और अता किया थोड़ा, यानी थोड़ा खर्च किया, खर्च करने की जगहों पर थोड़ा खर्च किया, वह अकदा और सख्त निकला। तो इसका जो तर्जुमा बनता है वैसे वो बनता है कि उसने फिर बंद कर दिया देना, यानी थोड़ा उसने खर्च किया नेकी के काम के अंदर, फिर उसके बाद बंद कर दिया। ठीक है, तो अगदा का मतलब होता है कि उसने फिर देना बंद कर दिया। अंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, आ ये हमजा इस्तेफामिया है जिसका मतलब होता है क्या, इंदहु उसके पास, ठीक है, क्या उसके पास इल्मुल गैब है, इल्मुल गैबी, गैब का इल्म, गैब का इल्म क्या चीज होता है, गैब का इल्म ये होता है कि किसी शख्स के पास ऐसी सलाहियत हो कि जो जो चीजें छुपी हुई हैं उसको उन सब का पता हो, इसको कहते हैं इल्मुल गैब। जो जो छुपी चीजें, मिसाल के तौर पर आप कमरे में बैठी हुई है ना, तो अब दूसरे कमरे में जो कि दीवार के उस पार है आपको पता हो कि क्या हो रहा है उस दूसरे कमरे के अंदर, राइट, क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है और क्या चीजें कैसी रखी हुई है, सब कुछ पता हो आपको दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, घर के बाहर क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है आपको पता हो, कि सड़क पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब आप किसी एक मुल्क में बैठी हुई है, आपको पता हो कि फलाने दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों का इल्म होना ना इसको कहते हैं इल्मुल गैब। ठीक है, ये किसके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास, ये किसी और के पास नहीं, ना ये जिब्राइल अमीन के पास है, मीकाइल के पास है, इसराफील के पास है, इजराइल के पास है, ना ये इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास है, आदम अलैहिस्सलाम के पास है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, किसी के पास ये इल्म नहीं, जिसको इल्मुल गैब कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज होती है जिसको कहते हैं अखबारुल गैब, गैब की खबरें। खबरें क्या चीज होती हैं, खबर जो होती है ना ये एक सिलेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर इस वक्त जो है वो आपके यानी किसी रिश्तेदार के घर में क्या हो रहा है ना, कोई आपको फोन करके खबर दे दे कि वहां पे ये हो रहा है, तो आपको क्या हुआ, आपको इल्मुल गैब मिल गया, क्यों भाई वो तो दूसरे मुल्क में बैठे हुए थे तो वहां पे क्या हो रहा है आपको पता चल गया, आपको इल्मुल गैब मिल गया, नहीं आपको इल्मुल गैब नहीं मिला, इसको कहेंगे आपको खबरुल गैब मिली है, एक खबर मिली है, एक न्यूज मिली है गैब। ठीक है, तो अंबिया के पास जो इल्म होता है ना कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ और इस वक्त जो है वो कहीं और क्या हो रहा है, ये इल्मुल गैब नहीं होता, इसको कहते हैं अखबारुल गैब। ठीक है, तो यहाँ पर इल्मुल गैब का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि ये जो बंदा है ना जो कि बहुत थोड़ा देता है और फिर बंद कर देता है देना, तो क्या उसके पास इल्मुल गैब मौजूद है, फहुवा यरा, और वो उसको देख रहा है ना कि भाई जो कुछ छुपी हुई चीजें हैं उनको वो देख रहा है बैठ करके। ठीक है, यरा का मतलब होता है उसने देखा, और हुआ जो है वो तो क्या वो देख रहा है, ये गैर में चीजें हो रही है। अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा, अम का मतलब क्या, लम युनब्बा के उसको खबर नहीं पहुंची, तो अम लम युनब्बा क्या उसको खबर नहीं पहुंची। नबा यम्बाउ का मतलब भी होता है खबर, एक्चुअली अरबी में ना खबर खबर के लिए नबा का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जैसे अम्मा यतसाअलून अनिल नबा अल अज़ीम, ठीक है। तो इस वजह से अखबारुल गैब के साथ साथ जो ज्यादा मुनासिब वर्ड है अरबी में वो है अम्बाउल गैब, यानी गैब की खबरें, ठीक है। तो यहाँ पर नम युनब्बा के क्या उसको खबर नहीं मिली, अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा, उस चीज के बारे में जो मूसा अलैहि सलाम के सहीफों में थी, यानी तौरात के अंदर, ठीक है। क्योंकि मूसा अलैहि सलाम को जो अल्लाह ताला ने जो औराक दिए, सहीफे दिए, वो वही तौरात कहलाते हैं। फी का मतलब होता है में, तो क्या उसको सुहफ मूसा के अंदर जो बातें हैं उसकी खबर नहीं मिली, ठीक है। यानी ये जो मक्का मुकरमा के मुशरिकीन थे ना, क्योंकि यहाँ पर एक मुशरिक की बात हो रही है, मक्का मुकरमा में रहने वाला, उसकी बात आगे तफसील आ रही है, तो इन लोगों तक मूसा अलैहि सलाम की बातें भी पहुंची हुई थी, ठीक है ना, तफसीलन नहीं पहुंची थी, ये उलमा नहीं थे बनी इसराइल के, राइट राइट, और आप इंजील के उलमा नहीं थे, लेकिन हाई लेवल इंफॉर्मेशन इन तक भी पहुंची हुई थी कि मूसा कौन था और मूसा अलैहि सलाम कौन थे और उनके ऊपर क्या किताबें नाजिल हुई थी, और इन लोगों को पता थी ये बातें। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहिम की, ठीक है ना, यानी फी सुहफ़े मूसा व इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहि सलाम के ऊपर भी तो सहीफे नाजिल हुए थे ना, तो इसके पास क्या इब्राहिम अलैहि सलाम की भी खबरें नहीं पहुंची। ये लोग तो इब्राहिम अलैहि सलाम को अपना बाप कहते थे, यानी जद्द अमजद, क्योंकि अरब जो थे ये इब्राहिम अलैहि सलाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, ठीक है, क्योंकि इनसे इनका डायरेक्ट नसब जा करके मिलता था ना, मूसा अलैहि सलाम से तो डायरेक्ट नसब नहीं मिलता था, इब्राहिम अलैहि सलाम से तो मिलता था, तो अल्लाह ताला ने यहाँ इब्राहिम अलैहि सलाम को भी जिक्र किया कि क्या इन तक खबर नहीं पहुंची जो इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफों के अंदर बातें थी। लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम की एक अल्लाह ताला ने एक कैरेक्टरिस्टिक भी बयान करी, अल्लज़ी वफ़ा, कि जो के वफादार था, वफ़ा ठीक है, वफादार था, यानी अपने मालिक को, अपने बड़े को धोखा नहीं देता था। वफादारी का मतलब क्या होता है, ताबेदारी और धोखा ना देना। जैसे मालिक का वफादार कौन गुलाम होता है, कौन 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 खादिम वफादार कहलाता है, जो कि अपने मालिक के साथ 420 ही ना करें, धोखे ना दे, है ना, और उसकी बात को माने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो मेरा वफादार था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन था, कोई बंदा तो नहीं था, परवरदिगार ही थे ना, परवरदिगार के ये वफादार गुलाम थे। फिर उसके बाद फरमाते हैं अन ला तज़िरु, अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह असल में ये अन है और फिर लाम अलिफ ला है, ठीक है। तो अन का मतलब होता है के, और ला का मतलब होता है नहीं। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, ठीक है जी, ये आयत है, फरमाते हैं कि क्या ऊपर बात चल रही थी ना कि क्या इस तक वो खबरें नहीं पहुंची जो मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी, के यानी कौन सी बात की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं जो इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी। के ला तज़िरत ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, विज़्र किसको कहते हैं, बोझ को, ठीक है, वाज़िरतुन किसको कहते हैं, बोझ उठाने वाला, वाज़िरतुन बोझ उठाने वाला, विज़्र बोझ, वाज़िरतुन बोझ उठाने वाला, और तज़िरु का मतलब कि वो बोझ उठाएगा, ठीक है। वज़रा यज़िरु, ये अरबी ग्रामर के अंदर ये मिलती है, ठीक है। तो क्या खबर, कहाँ अल्लाह ताला यहाँ पे किस खबर का को रिफर कर रहे हैं, वो ये कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। ये एक ऐसी बात है, ऐसा यूनिवर्सल उसूल है जो कि अल्लाह ताला ने हर नबी के सहीफे के अंदर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर उनमें से मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खासकर जिक्र भी फरमा दिया कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, ठीक है। यानी यहाँ पर गुनाहों के बोझ की बात हो रही है कि अच्छा तुमने गुनाह किए हैं तो चलो मैं तुम्हारे गुनाह को जो है ना वो अपने ऊपर ले लेता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इसका जो शान नज़ूल है वो पढ़ करके आपको और बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने ऐसी बात क्यों फरमाई यहाँ पर। अच्छा, और एक और बात, वह अन, ये यहाँ पर भी तो अन था ना, आपको बताया ना अल्लाह जो होता है वो असल में क्या होता है, अन ला, ठीक है। तो अगली आयत में भी अल्लाह ताला इसी तरीके से अन के दैट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना दैट, या उर्दू में कहेंगे के, और के दूसरी खबर इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में जिनका अल्लाह ताला यहाँ पर तस्करा कर रहे हैं, वो दूसरी खबर क्या है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए नहीं है, लैसा का मतलब होता है नहीं, लिल इंसान इंसान के लिए, इल्ला सिवाय उसके मा सा जो उसने मेहनत करी, जो उसने यानी सई करी, सई कहते हैं ना मेहनत करने को, जद्दोजहद करने को, तो जो उसने किया है ना वही है उसके लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब, मतलब यही है कि उसने अगर नेकी करी है ना तो उसको नेक बदला ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसको बुरा बदला मिल जाए, और अगर उसने बुराई करी है तो उसको ये यानी अच्छा बदला नहीं मिल सकता, उसको बुरा ही बदला मिलेगा क्योंकि उसने बुराई करी है, ठीक है। तो लैसा लिल इंसान है इल्ला मा सा, उसको जो उसने किया है उसी का बदला मिलेगा, किसी और चीज का बदला नहीं मिलेगा। क्या मतलब, ये एक ऐसा उसूल है कि हर चीज कवर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी इंसान जो जिंदगी में जैसे अमाल करता है उसको वैसे ही सिला मिलेगा, हत्ता कि उसके मरने के बाद भी जो उसको मिल रहा होता है वो असल में उसके नेक अमाल ही के बदले में मिल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ईसाले सवाब पहुंचाना। कि हम इसारे सवाब कहते हैं ना कि जी वो जो पिछले क्लासों में भी ये बात हो चुकी है कि जी जो हमारे वो है ना अहले हदीस भाई बहन है ना, गैर मुकल्लद भी जिनको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी एक बंदा जब मर गया ना तो अब कोई उसको इसारे सवाब नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसका अमल जो है वो बंद हो गया, उसका नाम है अमाल बंद हो गया, अब आप कुरान पढ़ पढ़ करके उसको सवाब नहीं पहुँचा सकते, ठीक है ना। तो हमारे उलमा कहते हैं कि नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं उसका अमल बंद हो गया, अब कोई दूसरा कोई थोड़ी अमल करके पहुंचा सकता है उसको, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर ये इस आयत को भी वो बतौर दलील के इस्तेमाल करते हैं कि अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो उसने खुद किया उसका अमल तो उसका तो उसको सवाब मिल गया, अब तो वो मर चुका है, अब तो वो अमल नहीं कर सकता कब्र के अंदर जा करके, तो अब आप उसको कैसे सवाब पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, अब कोई और अमल करके उसको कैसे सवाब पहुंचा सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो इसी आयत से फिर इस्तदलाल करते हैं और कुछ हदीसों से भी इस्तदलाल करते हैं, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं नहीं मरने के बाद भी सवाब पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वो कैसे, जब उसका अमल बंद हो गया तो अब कोई दूसरा अमल करके कैसे सवाब पहुंचा सकता है, इसका जवाब आप देंगे, जब वो अब अमल कर ही नहीं रहा तो फिर दूसरा शख्स अमल करके उसको कैसे सवाब पहुंचा सकता है, ये एक लॉजिकल सवाल है, इस आयत की रोशनी में जवाब दें उसका, कैसे दूसरे के अमल का सवाब उसको कैसे मिल रहा होता है हालांकि वो उसका अपना अमल नहीं होता, वो तो दूसरा कर रहा है ना, कुरान पढ़ रहा है, तो जब किसी दूसरे ने कुरान पढ़ा तो उसी को उसका सवाब मिलना चाहिए था ना, कब्र में मौजूद किसी शख्स को सवाब कैसे मिलेगा इसके कुरान पढ़ने का, तो हमारे उलमा क्या गलत कहते हैं, तो क्या जवाब है इसका, अमल जो है कोई जिंदा शख्स कर रहा है और सवाब किसको पहुंचा रहा है जो मर चुका, कैसे अपना अमल किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं, इसका जवाब क्या है जी, उनके किड्स जो पढ़ेंगे उसका सवाल इन द फॉर्म ऑफ गुड इस्लामिक ब्रॉटअप, जैसे औलाद को सदका जारिया कहा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिफाई करके आ जवाब दें। ठीक है, आप यू आर इन द राइट डायरेक्शन, सही, ठीक है, सही रुख पर है, लेकिन इस जवाब को जरा आप दूसरे अल्फाज में, ताकि इस सवाल का जवाब भी हो जाए ना, यानी जैसे सवाल हो वैसे ही जवाब होना चाहिए ना, सवाल जरा डिफरेंट अंदाज में हो, जवाब आप किसी और अंदाज में देंगे तो वो सही जवाब नहीं बनता, अच्छा जवाब नहीं बनता। ये हदीस पाक से साबित है भाई, अहले हदीस के पास क्या हदीस नहीं होती है आपके ख्याल में, सिर्फ देवबंदियों के पास हदीस है। तो भाई आप कहें कह नहीं हदीस से साबित, वो कहें नहीं हमारे पास भी हदीस है, हम भी हदीस से साबित है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये नकली दलील जो कि हदीस पाक से साबित है ना, ये है नकली दलील, तो नकली दलील तो उनके पास भी निकल आती है, आपके पास भी निकल आती है, तो नकली दलील हदीस का जवाब नहीं होती है ना, क्योंकि आपके पास भी एक नकली दलील है, उनके पास भी एक नकली दलील है, तो इस वजह से ना कुछ ऐसे मुकामात भी आते हैं कि जिनके अंदर जरा अकली दलील की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत आसान सी अकली दलील है वैसे इसके अंदर, और ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं ना इन दोनों में, तो वो भी अकली दलील कि भाई जैसे कि इन्होंने कहा ना कि जैसे औलाद है उसके लिए कुरान पढ़ रही है, तो भाई उस औलाद की नेक तरबियत इस माँ बाप ने करी है ना जो कि आप कब्र में पड़े हुए हैं, है ना, तो जो औलाद का कुरान पढ़ना है ये दरअसल उसी का नेक अमल है कि जो कि कंटिन्यू हो रहा है उसके मरने के बाद। ठीक है, तो ये जो पढ़ पढ़ करके ईसाले सवाब कर रहे हैं, तो असल में तो ये उसी का नेक अमल है ना जो कि इसने, इसका अपना नाम है अमाल बंद हो गया, क्योंकि एक्टिव अमल ये नहीं कर सकता कबर में जाकर के, अब ये अमल नहीं कर सकता। अच्छा, कबर में लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ये भी साबित है, ये भी हदीस मुबारक से साबित है, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाब कुछ नहीं मिल रहा, कितने भी करोड़ कुरान पढ़ने जाकर के कबर के अंदर सवाब उसको एक रत्ती का नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, निशात मिलता है कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से निशात और यानी आसूदगी मिलती है, इस वजह से वो कब्र में नमाज पढ़ रहे होते हैं, आलम बरज़ख जिसको कहते हैं। ठीक है ना, सवाब वाप कोई नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा खैर ये तो एक जिमनी बात थी, लेकिन ये जो उनकी औलाद पढ़ रही है तो भाई उनके नेक अमल की वजह से ये औलाद को यानी कुरान पढ़ रही है ना उनके लिए। ठीक है ना, तो उनको दरअसल ये उन्हीं का एक अमल है जो कि इस दुनिया में जारी हो चुका है, जिसको कि अमल का असर कहते हैं, ये अमल का सवाब डायरेक्टली नहीं कहलाता या बदला नहीं कहलाता, बल्कि इसको कहते हैं आसार जो कि कंटिन्यू हो रहे होते हैं। उसी तरीके से चले, ये तो औलाद की बात होगी, औलाद की तो उसने तरबियत करी, ठीक है, लेकिन सिर्फ औलाद की थोड़ी ही सारे सवाब कर सकती है, हमारे मशायख और उलमा के नजदीक तो जो भी पढ़ करके कुरान बख्श देगा, चाहे वो बिल्कुल कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक ना हो, वो भी अगर कुरान पढ़ करके बख्शेगा वो भी पहुंचेगा मरने वाले को। तो भाई दूसरे लोग जो पढ़ करके इसको कुरान बख्श रहे हैं, यानी जिसको इशारे सवाब करना कहते हैं, बख्शने का मतलब असल में जो होता है ना वो इशारे सवाब भी करना होता है कि अल्लाह मेरा जो ये कुरान पढ़ना था इसका सवाब जो आप मुझे देंगे ना ये उसको भी पहुंचा दें, ये दुआ असल में इशारे सवाब होती है। ठीक है, तो ये जो कुरान पढ़ के उसको इशारे सवाब कर रहा है ना, इसकी तौफीक, इसका ख्याल इस बंदे के दिल में किसने डाला? अल्लाह ताला ने डाला। और अल्लाह ताला ने क्यों डाला? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि अपने उस बंदे को जिसने कि अपनी जिंदगी में नेक आमाल किए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसके मरने के बाद भी उसको आमाल का सवाब पहुंचता रहे, वो खुद तो नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह ताला किसी और से करवा करवा करके उस तक पहुंचाएंगे, किसी और से करवा के उसको पहुंचाएंगे, लेकिन किस वजह से अल्लाह ताला किसी और के दिल में ये बात डाल रहे हैं कि उसके लिए सारे सवाब करो, वो उसकी अपनी नेकी ही की वजह से डाल रहे हैं। ठीक है ना, उसने जिंदगी में जो कुछ किया है ना अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला अब लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि उसको अपनी दुआओं में याद रखा करो, उसको ये सारे सवाब करते रहा करो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि यानी बगैर किसी वजह के, ये सारा का सारा अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जो कि अल्लाह ताला इस तरीके से चलाते हैं। अल्लाह ताला नेकी पहुंचाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने जरिए बनाए हुए होते हैं नेकी पहुंचाने, ठीक है ना। वरना ये भी तो हो सकता है कि कोई सारे सवाब ना करता हो, वैसे ही अल्लाह ताला उसको सवाब पहुंचाते रहे, ठीक है ना। नहीं, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने सवाब पहुंचाने ना तो अल्लाह ताला किसी के दिल में डालेंगे, वो नेकी करेगा, फिर दुआ करेगा ये सारे सवाब की, फिर उसके वास्ते से अल्लाह ताला उसको सवाब, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह ताला इस निज़ाम के पाबंद बेशक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको अपनी सुन्नत बनाया हुआ है। कभी कभी एक्सेप्शन भी अल्लाह ताला कर देते हैं कि भाई कोई बंदा ना नेकी कर रहा हो फिर भी उसको सवाब पाता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते रखे है ना, वो फरिश्ते फिर उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को बेसिकली इस्तेमाल करना होता है काम करवाने के लिए। बहरहाल, तो अलैसा लिल इंसान इल्ला मा आसा, जो उसने किया है उसी का उसको मिलता है, ठीक है। अच्छा, वो अन्न सअयहु सौफ युरा, और ये और बेशक यहाँ पर अन्न नहीं है बल्कि अन्ना है, ठीक है। तो इसका भी तर्जुमा वैसे कैसे ही बनता है, कैसे ही किया जाता है उर्दू के अंदर, लेकिन इसमें जरा सा एक ताकीद भी आ जाती है। खैर, अन्ना और ये के सअयहु, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, सौफा अन करीब युरा, उसको दिखाई जाएगी, ठीक है ना। यानी जो उसने किया है ना, तो अल्लाह ताला उसको, उसको कहते हैं ना कि जतलाना भी है, अल्लाह ताला उसको जतलाएंगे, अल्लाह ताला उसको दिखलाएंगे, देखो ये तुमने किया, ठीक है। सौफा युरा, उसको दिखलानी जरूर है। ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, फिर उसको बदला मिलना है, जजा यज्जी यानी जजा मिलना, बदला मिलना, तो उसको बदला दिया जाएगा, अलजज़ा अलऔफा, पूरा पूरा बदला। अवफा का मतलब जो के यानी वफा करने वाला, यानी जितना उसने किया है ना पूरा पूरा बदला मिले, इसी को तो वफा करना कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये जो चंद आयात है ना यहाँ पर, ये अल्लाह ताला ना इसके अंदर यानी दुनिया की जिंदगी के उसूलों को समेट रहे हैं, ठीक है ना जी। सुम्मा युज्जाहुल जज़ाल औफा व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ये भी तो एक उसूल जिंदगी है ना कि, और ये के इला रब्बिकल मुंतहा, तेरे रब की तरफ ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, मुंतहा इंतहा तुम्हारी, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तुम्हारे रब के पास ही है। ये भी तो एक उसूल ज़िंदगी है कि तुमने इधर नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना, आज या कल बिल आखिर इधर से तो गुजर जाना है, अगली स्टेज पे पहुंच जाना है। अगला स्टेज क्या है हमारा, आलम बरज़ख, फिर आलम बरज़ख पे भी हमेशा नहीं रहना, वहां से भी अगले स्टेज में जाना है जो कि आलम आखिरत है, और वहां पर फिर परवरदिगार का सामना करना होगा, ठीक है। तो तेरे रब ही की तरफ तुम्हारा यानी मुंतहा है, यानी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। वो अन्नहु हुवा अबहका व अबका, अब ना यहाँ पे ना इंटेंसिटी जो है वो और बढ़ रही है, ठीक है ना। और बेशक वही हुआ, अन्नहु हुआ, हु का मतलब भी वही वो, और हुआ का मतलब भी वो, तो जिस तरीके जब ये दोनों चीजें जमा हो जाती है ना, तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, और वही यानी वो ही, वही का क्या असल मतलब है, वो ही, ठीक है। अब हका हंसाता है, व अब का रुलाता है, यानी जो हम हंसते हैं रोते हैं ना, ये अल्लाह ताला के भेजे हुए हालात ही की वजह से होता है कि हम हंस रहे होते हैं, और अल्लाह ताला के भेजे हुए हालात ही की वजह से होता है कि हम रो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अल्लाह ताला के, यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत यहाँ पर याद दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। देखें कलाम की, कलाम जो है ना, अब किसको कहते हैं, आपने कभी मशायख के बयान सुने होंगे, स्पेशली हमारे हजरत के जो पहले बयान हुआ करते थे ना, शुरू में जो है ना बड़े आराम से और सहूलत से और बड़े ठंडे ठंडे किस्म के बयान बयान चलता रहता था। जब इख्तिताम कर रहे होते थे ना, तो उस वक्त है ना वो जज्बात बढ़ते थे, बात करने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता था, और उसके अंदर जो है वो आवाज भी तेज हो जाती थी, और जो है ना वो ऐसे हालात बनते थे कि अब सामने बैठे वाले लोग जो है ना वो रोना शुरू हो जाए और गिड़गड़ाना शुरू हो जाए, है ना, और आखिर में ना फिर उसको इस तरीके से पहुंचा करके वा आखिर दावाना अनिलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। तो आखिर में जो है ना इंटेंसिटी बन जाती है बयान की। अल्लाह ताला यहाँ पर भी इसी तरीके से कह रहे हैं, इंटेंसिटी रेज कर रहे हैं अपने बयान की। वह अन्नहु हुआ अबका वह अन्नहु हुआ माता व अहया, और बेशक वही है जो कि मारता भी है और जिंदा भी करता है। वह अन्नहु खलक जौजैन ज़कर वल उन्था, और वही है कि जिसने तख्लीक किया जौजैन को, जो पार्टनर्स होते हैं जिंदगी के अंदर हर चीज के, सिर्फ मियाँ बीवी पार्टनर नहीं होते, बल्कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पार्टनर्स की शक्ल में बनाया है, हर चीज के ऑपोजिट्स बनाए हैं अल्लाह ताला ने। दिन का पार्टनर रात को बनाया, रात का पार्टनर दिन को बनाया, है ना, खुशी का पार्टनर गम को बनाया, गम का पार्टनर खुशी को बनाया, हर चीज को अल्लाह ताला ने इस तरीके से जौजैन की शक्ल में पैदा किया है। और इसके अंदर किसी को जकर यानी मर्द की क्वालिटी दी हुई है, ठीक है, और किसी को उनसा वाली क्वालिटी दी हुई है, ठीक है। जैसे दिन और रात को अगर आप देखें तो शायद आपके ध्यान में आए कि दिन जो है ना गोया के मर्द की मानंद है और रात जो है गोया के औरत की मानंद है, वगैरह कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोच सकता है, ठीक है ना। तो हर चीज को अल्लाह ताला ने इस तरीके से एक जौजैन की शक्ल में बनाया है। तो और ये कि उसने बनाया जोड़ा नर और मादा का, आम अंडरस्टैंडिंग तो वही कि जी इंसानों में और जानवरों के अंदर और इवन प्लांट किंगडम के अंदर भी जो है नर मादा होते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो हर चीज पर अप्लाई होती है अल्लाह की तस्वीर के अंदर। तो खलक जवजाइन जकर अवल उन्था मिन नुफतिन इजा तुमना, जो कि यानी नुफे से बनता है जिसको तुम बताते हो, तुमना मना मनी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो चीज़ें क्रिएट होती हैं दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की मर्जी से होती हैं, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सेलुलर सिस्टम रखा है जिससे कि वो चीज़ें आगे चलती हैं, ठीक है। वह अन्न अलैहिन अलैहिन नशअतल उखरा, और बेशक उसके ऊपर है यानी उसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह की जिम्मेदारी। अला का लफ्ज़ जो है ना उसका मतलब होता है पर, उस पर, इट इज़ अपॉन हिम। तो अपॉन हिम का मतलब ये होता है कि ये उसने अपने जिम्मे लिया या ये उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अन्ना अलैहि क्या है, अन्नशअतल उखरा, एक और मर्तबा का पैदा किया जाना। नशा यंशाउ का मतलब पैदा पैदा होना, और अनशा यंशाउ का मतलब पैदा करना, ठीक है। जैसे इनशा अल्लाह के अंदर भी यही वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है ना। तो नशअतल उखरा, ये दूसरी दफा का उठाना जो है ना वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। ये तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए अल्लाह ताला की, दूसरी दफा तुम फिर से उठ जाना, तुम्हारी असिस्टेंस चाहिए अल्लाह ताला, नहीं, ये अल्लाह ताला की अपनी जिम्मेदारी है। वह अन्नहु हुआ अगना हुआ अकन, और बेशक वही है, हु और हुआ कॉम्बिनेशन को उर्दू में वही है, अगना जो कि गनी करता है यानी दौलत देता है। गनी करने का मतलब कि ऐसा इंसान को बना देता है कि उसको किसी की हाजत नहीं रहती, मोहताज नहीं रहता, यानी मालदार जो लोग होते हैं तो बज़ाहिर वो गनी हो जाते हैं, उनको किसी की हाजत नहीं रहती। तो वही है जो कि किसी को मालदार बनाता है। वह अकना, अकना का मतलब होता है खजाना देना, ठीक है ना, यानी किसी को ट्रेजर्स मिल जाते हैं तो वही ट्रेजर्स ट्रेजर्स देने वाला है। वो अन्नहु हुआ रब्बु शेरा, और वही है शेरा का रब। ये चीज रह गई सर, इसका सितारा शेरा का जी, जिसकी इबादत जाहिलियत में बाद लोग करते थे, ठीक है। तो आगे फिलासफी ने लिखा हुआ है कि ये सितारे का नाम है जिसकी लोग इबादत किया करते थे। तो वही है जो कि शेरा का रब है। तुम लोग क्या शेरा की इबादत करते हो, तुम शेरा के रब की क्यों नहीं इबादत करते। वह अन्नहु अहलाका आदनिल, और वही है कि जिसने हलाक कर दिया आदे उला को, ये कौम आद जो थी ये इसकी दो जनरेशन दुनिया में आई हैं, एक थी आदे उला और दूसरी थी आदे उखरा, ठीक है ना, यानी एक यानी आद की पहली जनरेशन और उसके बाद इनके दो जनरेशन के बाद तकरीबन दूसरी आद की फॉर्म है, जिसको के समूद भी कहा जाता है। ये नूह अलैहि सलाम के ना एक बेटे की औलाद में से, ठीक है, तो वही है जिसने के आदे उला को भी हलाक किया, वह समूद फमा आपका, और समूद को भी हलाक किया। तो समूद कौन थे, ये जो आद की नेक्स्ट जनरेशन थी उसका नाम फिर कौम समूद पड़ गया था, ठीक है, यानी ये भी उन्हीं की औलाद में से थे। आद में से जो लोग बच गए थे, ईमान वाले जो बच गए थे, तो फिर उनकी फिर कुछ जनरेशन तक फिर दोबारा से वही शिर्क और गुमराही शुरू हो गई थी, तो फिर वो कौम समूद बनी जिनके पास सालेह अलैहि सलाम को लगाने भेजा था। और समूद फमा अब्का के फिर किसी को बाकी ना छोड़ा, यानी जो काफिर थे समूद के उनमें से किसी को फिर बाकी नहीं छोड़ा, तबाह कर दिया। सालेह अलैहि सलाम और उनके साथ जो जो ईमान वाले थे वो बाकी बच गए, काफिरों को बाकी नहीं छोड़ा जाता। माँ अबका, माँ जो है वो नाफिया है नहीं के माने में, और अबका मतलब उसने बाकी छोड़ा, यानी उसने बाकी नहीं छोड़ा। वकौम नूह, और नूह अलैहि सलाम की कौम, ठीक है ना। अब जो है वो अजीब, पहले आज को जिक्र किया जो नूह अलैहि सलाम के पोतों की जनरेशन में से थे, फिर उनके पड़ 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 पोतों की जनरेशन का जिक्र किया जो कि समूद थे, और फिर वापस नूह अलैहि सलाम की कौम का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इस ऑर्डर में क्यों जिक्र किया है। वकौम नूह, और जो नूह अलैहि सलाम की कौम थी, मिन कबल यानी इनसे पहले, इन्नहुम कानू, बेशक वो थे, कानू का मतलब वो थे, हुम वही थे, फिर यानी कानू के अंदर भी वो थे और फिर हुम दोबारा से उसके वही वही थे, अज़लमा जालिम जिन्होंने जुल्म किया, अज़लमा का मतलब जिन्होंने जुल्म किया, वह अदगा और जिन्होंने बगावत करी, ठीक है ना, यानी गुनाह, जुल्म का मतलब होता है गुनाह करना, और बगावत का मतलब होता है कि बहुत बढ़ चढ़ करके गुनाह करना और दूसरों को भी गुनाह के अंदर इन्वॉल्व करना, उसको कहते हैं अतगा यानी बगावत करना। वल मुतफिकता अहवा, और मुतफिका जो है वो बस्तियों को कहते हैं, नहीं आ रहा, पहले पढ़ा था, लेकिन ये कुछ बस्तियां थी, क्या तस्वीर थी, हाँ ये शायद वो लूत अलैहि सलाम वाली जो बस्तियां थी, ठीक है, तो उनको फिर पटक दिया, यानी दे मारा जिसको कहते हैं ना, ऊपर ले जा करके जिब्राइल अलैहि सलाम ने उनको जो है वो पलट करके नीचे जमीन पे दे मारा था, तो उसको फरमाया कि अहवा, कि उल्टी बस्ती को पटक दिया, यानी उल्टा कर दिया उसको। फगशाहा मागशा, तो गशा का मतलब क्या होता है कि ढांप लेना, जैसे कि जब कोई इंसान गशी का शिकार हो जाता है तो उसके ऊपर बेहोशी जो है ना वो गालिब आ जाती है, उसको ढांप देती है बेहोशी, तो फिर वो गशी में बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो फगशाहा फिर पड़ा, आ पड़ा उस पर, यानी ढांप लिया, कवर कर लिया उसको, मागशा जिसने उसको कवर किया, ठीक है। ये जो फगशाहा मागशा, ये एक अंदाज है बात करने का जो कि सूरह नजम के अंदर शुरू से चला आ रहा है ना, फाउहा इला रब्बिका मा औहा, ठीक है ना, इस तरह से जो है मा जागल बसरो, नहीं क्या था, इज यक्ष सिदरा था मा यक्षा, ये पीछे भी अल्लाह ताला ने इसी अंदाज में बात करी थी, फाउहा इला अब्दिही मा औहा, इसी तरीके से आखिर में भी अल्लाह ताला इसी अंदाज में बात कर रहे हैं, फगशा मागशा, कि उनको ढाप लिया जिस चीज में भी उसको ढापा, फबी अय्यि आलाई रब्बिका ततमारा, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, सूरह रहमान की आयत से भी वाकिफ है ना, तो वही अंदाज अल्लाह ताला, फबी अय्यि आलाई, आला कहते हैं नेमतों को, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिका अपने रब की, ततमारा तुम झुटलाओगे, ठीक है, तो तमारा या तमारा जो है ना इसका मतलब झुटलाने से भी हजरत जैसे यहाँ पे किया, और ये कि शक करोगे, तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियमतों में तुम शक करोगे, ठीक है, डाउट में मुब्तला रहोगे उनकी नियमतों के बारे में। हाजा नजीरुन मिनन नुजरन उड़ा, ये तो एक नजीर है, आजा ये नजीर डराने वाला, ठीक है, यानी इस बात से डराने वाला कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे, नेक नहीं बनोगे, तो तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं नजीर, या मैं इसको कहते हैं नजर, और इस करने वालों को नजीर कहते हैं, ठीक है। बुरे अंजाम से डराना, नुकसान से डराना, और माँ बाप भी नजीर होते हैं औलाद के लिए, तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो औलाद को डरा डरा करके खुश नहीं हो रहे होते, एंजॉय नहीं कर रहे होते कि भूत परी से डरा रहे, बल्कि वो किस चीज से डरा रहे होते हैं कि बेटा अगर तुम जो है ना वो चूल्हे के करीब खड़े होगे ना तो जल जाओगे, तो भाई ये कोई नुकसान वाली बात कर रहे हैं, ये तो उसके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जो अंबिया होते हैं वो भी नजीर होते हैं कि इंसानों को उनके नुकसान से रोकने के लिए उनको डराते हैं, कभी नुकसान वाली चीज से तुम्हें ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये नजीर है मिन नुजुरुल उला, जो 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 पीछे नुजुर यानी डराने वाले गुजर चुके हैं ना, तो उन्हीं में से, उन्हीं के जैसे ये भी एक डराने वाले हैं, ठीक है। अजिफतल आजिफा, आजिफा कहते हैं जो आ पहुंचने वाली है, अप्रोच करने वाली चीज है, क्या चीज, कयामत, ठीक है। तो अजिफत का मतलब करीब आ गई, आ पहुंची, आने वाली, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का जो आना है ये कुर्बे कयामत के अलामात में से एक अलामत, ठीक है। तो कयामत जो है ना वो करीब आ गई है तुम्हारे, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ये नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा और कोई खोल कर दिखाने वाला। काशिफ कहते हैं खोलने वाले को, रिवील करने वाले को, जैसे कोई पर्दा किसी चीज के ऊपर पड़ा हो ना, जैसे कोई 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 ट्रे है, उसके अंदर कोई खाने की चीज है, उसके ऊपर आपने कुछ ढक दिया है, अब अगर आप उस पर्दे को उठाएं ताकि अंदर की चीज नजर आ जाए, तो उसको कहते हैं कि आपने कशफ किया, और उठाने वाले को काशिफ कहेंगे और उठाने वाली को काशिफ तुम कहेंगे, ठीक है। तो माने कि इसको अल्लाह के सिवाय खोल कर, अल्लाह के सिवाय खोल कर दिखाने वाला और कोई नहीं है, ये कयामत कब आएगी। और अफा मिन हाजल हदीसी ताजबुन, आ का मतलब क्या, फा का मतलब पस, और मिन का मतलब से, तो हाजल हदीसी, इस हदीस से ताजबुन, तुम्हें ताजुब होता है, तो अताजबुन, क्या तुम्हें ताजुब होता है इस बात से, यानी तुम्हें बड़ा अजीब लगती है ये बात कि भाई कयामत आने वाली है, कयामत करीब आ गई है, और अल्लाह ताला ही कयामत को जो है वो रिवील करने वाले हैं, क्या तुम्हें इस बात से बड़ा ताज्जुब होता है। तबहकून वला तबकून, और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो, यानी तुम्हें कयामत के बारे में बताया जा रहा होता है और तुम उसके ऊपर नबी, मेरे नबी का मजाक उड़ा रहे होते हो, ठट्ठे कर रहे होते हो, मजाक कर रहे होते हो और रोते नहीं हो उसको सुनकर, हालांकि तुम्हें तो बहुत रोना चाहिए कयामत की बात। वो अंतुम सामिदून, और तुम लोग जो है वो तुमने एक अम्यूजमेंट मचाई हुई है, खिलाड़ियां करते हो, यानी तुम जो है वो हंसी मजाक ठट्टे और अम्यूजमेंट वाला वाली हरकतें करते हो, ठीक है ना। वो अंतुम सामिदून, फसजुदू लिल्लाही वाअबुदू, बस सजदा करो अल्लाह ताला के सामने और उसकी इबादत करो, ठीक है। तो आयत सजदा है, जिस जिसने सुना है तो उसके ऊपर सजदा वाजिब है, जो सजदा अभी कर सकते हैं उनको अभी कर लेना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं यानी जिनके नमाज अभी नहीं है, तो वो फिर जब हो जाए तो फिर उनको फिर इस सजदे को करना होगा, ठीक है। ये तिलावत के जो सजदे होते हैं उनमें से एक सजदे का मुकाम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना फिर इस तरीके से इंटेंसिटी को इंक्रीज करते 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 कहाँ ला करके इस आयत, इस सूरत को रोका, फर्स्ट डू लाही, ठीक है। और ये इतना इंटेंस हो चुका था मामला कि जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि काफिरों तक ने सजदा किया इस सूरत को सुन करके, हरम के अंदर जितने मौजूद थे, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर, सारे के सारे सजदे के अंदर गिर गए, सिवाय उस एक बदबख्त के जिसने उस वक्त भी सजदा किया। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह शानी नज़ूल वगैरह अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी और कोई सवाल पूछना पूछ लें। शैल वी आस्क दुआ इन सजदा ऑफ नफिल नमाज इन आवर ओन लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड इट इज प्रोहिबिटेड टू रिसाइट कुरान करीम इन सजदा, सो व्हाट अबाउट रब्बना आतिना दुनिया, प्रोहिबिटेड टू रिसाइट कुरान करीम? नहीं, जो आप सजदे में अरबी में दुआ में, पहली बात तो है कि उर्दू में नहीं, ठीक है, बल्कि अरबी के अंदर दुआ करें। और अरबी में जो आप कुरान से दुआएं पढ़ रहे हैं या हदीस से दुआएं पढ़ रहे हैं ना, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। आप अच्छा, कुरान की रेसिटेशन एक अलग चीज होती है और उस कुरान की आयत को बतौर दुआ के पढ़ना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो रब्बना आतिना को ना आप वहां पर जो पढ़ेंगे ना, तो वो तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि दुआ की नीयत से पढ़ रहे हैं, और वो जायज, ठीक है ना। सो मच सो कि इवन जो औरतों के पीरियड्स के दिन होते हैं तो उनमें कुरान की तिलावत करना नाजायज है, लेकिन जो दुआ वाली आयात हैं तो उनको दुआ की नीयत से इवन उन हालात में भी पढ़ सकते, ठीक है ना। तो फिर सजदे के अंदर भी पढ़ सकते हैं, तो नीयत आपकी दुआ मांगने की होगी, ठीक है। What is a good method and how often to do इसाले सवाब? How often तो हस्बे तौफीक होता है कि जब आप, तौफीक का मतलब होता है कि एक तो दिल में ख्याल का आ जाना, फिर उसके बाद आपको मौका भी मिल जाना ना कि भाई आपको दिल में ख्याल तो आया लेकिन आप पता चला जो है वो कहीं शॉपिंग मॉल में थी, तो वहां पे बैठ के आप कुरान मजीद तो नहीं पढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो तौफीक का मतलब सिर्फ दिल में ख्याल आना नहीं होता, बल्कि दिल में ख्याल आना प्लस ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी आपको अवेलेबल हो जाना कि जिसमें आप कर भी रहे वो वाला काम, ठीक है। तो जितना आपको तौफीक मिलती है आप उतना इसाले सवाब करें ना, क्योंकि इसाले सवाब का मामला ऐसा है कि जो कर रहा होता है उसको भी सवाब मिल रहा होता है और फिर जिसको वो बख्श रहा होता है उसको भी सवाब मिल रहा होता है। तो ऐसा कोई थोड़ी है कि जी आप अगर इसाले सवाब करते रहेंगे तो खुद महरूम रहेंगे, तो कभी महरूम नहीं रहेंगे। तो जितना कर सकते हैं उतना करें, जितनी तौफीक मिल रही है उतनी करें। और बेस्ट मेथड की जहाँ तक बात है तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस है। मिसाल के तौर पर आप यानी कुरान पढ़ करके इसाले सवाब कर सकती हैं, ठीक है ना। जब आप कर सकती हैं, जब आप कुरान पढ़ ही नहीं सकती तो कैसे करेंगे कुरान पढ़ के सवाब। जब कभी आप जो है वो खैरात करके इसाले सवाब कर सकती हैं तो उस वक्त खैरात करके इसाले सवाब करें, ठीक है ना। भाई अल्लाह ताला की तरफ से पैसा है और आपको खर्च करने के मौके भी मिल रहे हैं, तो आप खैरात करके इसाले सवाब करें, ठीक है ना। उस वक्त कहें कि नहीं, मैं खैरात नहीं करूंगी, मैं कुरान पढ़ के इसाले सवाब करूँ। भाई आपको जब अल्लाह ने पैसा दिया है और खर्च करने के लिए कोई मौका दिया, जैसे कोई गरीब आ गया आपके पास, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो अब उस वक्त जो है ना वो वहां खर्च करने की बजाय नहीं, मैंने तो कुरान पढ़ के इसाले सवाब करना है बस, नहीं, उस वक्त आपको यानी इसाले सवाब खर्च करके करना है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये थ्योरेटिकल रूल्स नहीं है कि नहीं जी कुरान पढ़ के ज्यादा अच्छा इसाले सवाब हो सकता है और खैरात करके कम हो सकता है, खैरात करके ज्यादा हो सकता है, कुरान पढ़ के कम, नहीं। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन को कैपिटलाइज करना इससे फायदा होता है, और सिचुएशन के खिलाफ जा करके करना उससे फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है। और आखिरी बात ये कि जो एक अगर जनरल रूल भी चाहिए ना, तो वो ये है कि इसाले सवाब के जो मेथड है, कुरान और खैरात तो आपने करना है, वो तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लेकिन जो सबसे बेस्ट बेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, वो क्या है? वो ये है कि आप ऐसे अंदाज से इसाले सवाब करें कि जो के जारी हो सके, कंटिन्यूड, ठीक है ना, यानी एक दफा करके खत्म ना हो जाए उसका सवाब। जैसे कि मिसाल के तौर पर कुआं खुदवा देना, जिससे लोग पानी पीते रहें, जब तक पीते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, ठीक है ना। और कुआं भी कैसा, एक तो होता है फिजिकल वाटर वाला कुआं और एक होता है स्पिरिचुअल वाटर वाला कुआं, यानी इल्म का कुआं, ठीक है ना। इल्म का कुआं खुदवा दें यानी मदरसे के अंदर, ठीक है ना, जहां पे के लोग दीन का इल्म हासिल करें और आगे पढ़ाएं, वो किसी के नाम पे आप मदरसा खुलवा दें या उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन भेज दें, वो भाई उस ईसाले सवाब की तो फिर कोई इंतहा ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो खास तौर पर इस बात को याद रखें कि दीनी मदारिस के अंदर ये सारे सवाब की नियत से देना इससे ज्यादा बेनिफिशियल और कोई काम नहीं। ठीक है, बाकी अपने अपने टॉपिक के साथ जो जितना कर सकते हो करते हैं। द डेड पीपल आवर पेरेंट्स केम इन ड्रीम्स आफ्टर सम गुड डीड, ये सारे सवाल इज इट जस्ट आवर इमेजिनेशन और इज इट पॉसिबल? नो, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। ठीक है ना, हाँ इमेजिनेशन हो सकती है, यहाँ वो जो ड्रीम थी वो सच्ची सच्चा ख्वाब नहीं था, ये पॉसिबल है, लेकिन सच्चा ख्वाब होना, किसी का अपने ख्वाब में नजर आना, किसी से बातचीत होना, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोई नहीं ख्वाब में कोई नहीं आ सकता, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ख्वाब में लोग आते हैं और उससे बातचीत होती है। Shall we do it first namaz or in the end when we recite Dua Ibrahim? After that, we shall recite more dua. Shall we do it in first namaz? ये तो खैर आपका जवाब जरा सा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप का जवाब सवाल है, इसलिए कि फर्ज नमाज के आखिर में भी तो दुआ इब्राहिम के बाद दुआ पढ़ते हैं। आप कहना गालिबन ये कहना चाहेंगे कि हमें सजदे में दुआ करनी चाहिए या हमें दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ करनी चाहिए? ठीक है ना, ये आपका सवाल है जो कि मैं आपके लिए करेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों जगह कर सकते हैं, एक तो सजदों में जो दुआ वाली बात है वो नफिल नमाज। ठीक है ना, अच्छा एक और बात याद रखें कि जो फर्ज नमाज होती है ना तो उसको तूल देना सुन्नत नहीं है, फर्ज नमाज को लंबा करना, बल्कि फर्ज नमाज में तख यानी उसको इख्तिसार कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना लंबे सजदे करना या दुआएं पढ़ना फर्ज नमाज में अगर करेंगे ना तो ये फिर खिलाफ सुन्नत अमल हो जाएगा। ठीक है, ये हराम नहीं है लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है, तो ऐसा ना करें फर्ज नमाज के अंदर। ठीक है, नफिल नमाजों में जितना लंबा करना चाहें करें, यानी फर्ज नमाज में दुरूद इब्राहिम के बाद एक दो दुआएं पढ़ लें और सलाम फेर लें, यानी बनाते ना पढ़ लें, रब जल्दी मुकीम सलाती पढ़ लें, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन, ये वाली दुआ पढ़ लें बस। ठीक है ना, लंबी चौड़ी दुआएं फर्ज नमाज में ना करें, नफिल के अंदर जितनी पढ़नी है पढ़ें, सजदों में जितनी पढ़नी है पढ़ें, सजदों के दरमियान में अच्छी लंबी दुआ पढ़े, रुकू से उठने के बाद वो रब्बाना वलक अल्हम्दुल कसीर तो ये बन तो लंबी पढ़े पूरी। ठीक है, तो नफिल के अंदर ये सारे काम करें, फर्ज में इख्तिसार तो लाजम रखें। ठीक है, और कुछ खिड़किया कलमा जाने अनजाने निकल जाए तो सच्ची तौबा करके दिल में कलमा पढ़ लें। हाँ, जाने अनजाने निकल जाए डेफिनेटली, तो वो हाँ दिल में कलमा यानी कलमा पढ़ने जुबान से पढ़ लें, मतलब दिल में नहीं जुबान से पढ़ लें और दिल में सच्ची तौबा करने लगा रहे, माफी मांग लें। ठीक है, जाने अनजाने होते हैं ना, हो जाती है इस तरह की शुरुआत, कलमात तौबा जो मशायख करवाते हैं तो उसके अंदर जब भी कल ईमान की तजवीद करवा रहे होते हैं, इस तरह की हरकतें जो हैं वो कर जाते हैं लोग तजिया करने वाले। और चलो, मैं और कोई सवाल नहीं बता सकता हूँ, आपको जवाना